Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasade Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जाय। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। श्री श्री गुरु गौरांग की जाय। हमेशा बुकमार्क होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध तीसरा अध्याय। समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। श्लोक संख्या 28। एते च अंश कलाह पुंसह कृष्णः तु भगवान् स्वयं इन्द्र अरि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रार्व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रार्व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रार्व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे माताजी ठीक है बोलिए एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे एते ये सब च तथा अंश पूर्णांश कलाह पूर्णांश के भी अंश पुंसह परम पुरुष के कृष्ण भगवान कृष्ण तो लेकिन भगवान भगवान स्वयं साक्षात इंद्र अरि इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम सारे लोक को मृडयन्ति सुरक्षा प्रदान करते हैं युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश अंश या अंशांश कलाएं हैं लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य काफी लंबा है और ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस श्लोक की चर्चा दो दिन करेंगे। तो आधा तात्पर्य आज पढ़ेंगे और आधा कल पढ़ेंगे। तात्पर्य इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार जिसमें साक्षात भगवान सम्मिलित हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न लोकों तथा योनियों में होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके विभिन्न पूर्णांश या अंशांश, कलाएं या फिर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों के संपादनार्थ अवतरित होते हैं। भगवान मूलतः समस्त ऐश्वर्य, तेज, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या भिन्नांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल उन्हीं लट्टियों तक सीमित है। उसी बिजली घर से बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो चलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने परम शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि अन्य लोकों के देवता भी उसके भ्रिकुटी विलास से कांपने लगते थे। कई बार तो उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, सामग्री तथा अन्य मामलों में धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस पृथ्वी में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर डाले। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। जामदग्न्य ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद, पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उसके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न स्वरूपों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान का पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे अलौकिक स्वरूप तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय या काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवत के दशम स्कंध में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंध धीरे धीरे अग्रसर करता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के पाठ में हम अब पहुंचे हैं पहले स्कंध के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में। इसमें भगवान श्री कृष्ण की परम भगवत्ता या स्वयं भगवत्ता का प्रमाण है, उल्लेख है, इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके पीछे, इस श्लोक के पीछे इतिहास इस प्रकार से है कि सुखदेव गोस्वामी ने जब महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुना रहे थे तो अनेक ऋषि मुनिगण वहां उपस्थित थे। उनमें से एक थे सूत गोस्वामी। जब श्रीमद्भागवत की कथा समाप्त हुई 7 दिनों के बाद तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों में चले गए परीक्षित महाराज के तिरुभाव के बाद। सूत गोस्वामी भी अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते करते नैमिषारण्य नाम के स्थान में पहुंच गए। ये भी एक वन है, अरण्य, जिसका नाम है नैमिष, जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि और मुनिगण पहले से ही इकट्ठे हुए थे। सूत गोस्वामी को देखकर उन्होंने उनसे उनका स्वागत करने के बाद उनसे निवेदन किया कि वो भी उन्हें भागवत सुनाएं। और पहले तो सूत गोस्वामी की स्तुति की उन्होंने, और फिर सूत गोस्वामी से उन्होंने 6 प्रश्न किए। उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक ऋषि ने ये प्रश्न किए, 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों के बारे में अब चर्चा तो नहीं करेंगे, परंतु तीसरे और चौथे प्रश्न का विषय था भगवान के विभिन्न अवतार, जिनके बारे में ये सारे ऋषिगण जानना चाहते थे। तो क्रमशः सूत गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देते गए। और जब तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर देने का समय आया तो उन्होंने 3 पुरुष अवतारों का वर्णन किया, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। और उसके बाद इस तीसरे अध्याय में उन्होंने 22 महत्वपूर्ण अवतारों का वर्णन किया है संक्षिप्त रूप में। वैसे इन अवतारों का वर्णन तो सारे श्रीमद् भागवत में पाया जाता है शुरू से अंत तक, इसलिए तीसरे और चौथे प्रश्नों का उत्तर केवल इस अध्याय में नहीं बल्कि सारे श्रीमद् भागवत में पाया जाता है, क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं अलग अलग अवतारों का वर्णन पाया जाता है। फिर भी सूत गोस्वामी ने संक्षिप्त रूप में यहां इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया है। फिर इन 22 अवतारों का वर्णन करने के बाद फिर वो 26वें श्लोक में बताते हैं कि मैंने तो केवल थोड़े ही अवतारों का वर्णन किया है, वैसे भगवान के अवतार असंख्य हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। और फिर अब 28वें श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कह के घोषित कर रहे हैं और भेद कर रहे हैं श्री कृष्ण में और अन्य अवतारों में जिनका की उल्लेख वो अब तक कर चुके हैं। अब इन 22 अवतारों में जिनका वर्णन अभी अभी कर चुके हैं सूत गोस्वामी, उनमें सूत गोस्वामी श्री कृष्ण का भी नाम है। तो सूत गोस्वामी के मन में ये चिंता हुई कि मैंने 22 अवतारों का वर्णन तो किया और इसमें श्री कृष्ण का नाम भी आया, परंतु कहीं लोग ऐसा ना समझें कि श्री कृष्ण भी अन्य अवतारों की तरह ही हैं, उसी श्रेणी में हैं, श्री कृष्ण और अन्य अवतारों में कोई अंतर नहीं है, कहीं सभी ऐसा ना समझें। तो इसलिए उन्होंने ये 28वां श्लोक कह दिया, एते चांश कलाह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। और इसका अनुवाद फिर से पढ़ते हैं, आप दोहराइए। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश अंश या अंशांश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। वैष्णव आचार्यों ने, विशेष करके श्रील जीव गोस्वामी ने, इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना है। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में से ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी चर्चा, श्लोकों की चर्चा में क्रमशः हम आज कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में कुछ कहने का और सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। परिभाषा सूत्र मतलब वो श्लोक, वो सूत्र जिसमें कि सारे ग्रंथ की परिभाषा की जाती है, जिस विषय की चर्चा होनी है उसका वर्णन होता है, स्पष्टीकरण होता है, विषय का स्पष्टीकरण। क्योंकि वैदिक ग्रंथों में और अन्य संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथों में भी कई बार ऐसे देखा जाता है कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बात कहना चाहते हैं। कुछ कोई कई बार चीजों को हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते प्रत्यक्ष रूप से, और संस्कृत भाषा ही कुछ ऐसी है कि यद्यपि शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से होता है, उच्चारण भी स्पष्ट होता है, फिर भी किसी एक श्लोक को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और नाना अर्थ निकल सकते हैं। इसलिए परिभाषा सूत्र का महत्व ये है कि ग्रंथ के प्रारंभ में ही ये स्पष्ट किया जाता है कि सारे ग्रंथ में विषय क्या होगा, और ताकि आगे चल के किसी के मन में कोई द्वंद्व न हो, कोई भ्रम न हो, इसमें बहस करने की कोई बात न हो कि इसका ये ग्रंथ का विषय ये है या वो है। तो ये परिभाषा सूत्र ये एक प्रकार की चाबी होती है जिसके द्वारा हम इस ग्रंथ को खोल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कई बार संस्कृत ग्रंथ बहुत बड़े होते हैं, उसमें हजारों की संख्या में श्लोक होते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण के ऊपर एक अधिकृत ग्रंथ जो माना जाता है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। तो जो भी संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं अवश्य उनको पाणिनि के अष्टाध्यायी से व्याकरण पढ़ना होता है। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, और इसको पढ़ने के लिए कई साल लग जाते हैं, अनेक वर्ष लग जाते हैं। परंतु इस ग्रंथ का भी एक परिभाषा सूत्र है, एक श्लोक है इसमें जिसके द्वारा सारे ग्रंथ को जाना जा सकता है। तो परिभाषा सूत्र वो श्लोक है जिसको समझने से हम सारे शास्त्र को या सारे ग्रंथ को समझ सकते हैं, और जिसको नहीं समझने से हम ग्रंथ को गलत भी समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे कई श्लोक पाए जाते हैं जिससे ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण भी अन्य अवतारों की तरह एक अवतार हैं, वो भी भगवान विष्णु या नारायण से प्रकट होते हैं। परंतु ऐसे भी अनेक श्लोक हैं जिनमें ये स्पष्ट बताया जाता है कि श्री कृष्ण ही उत्स हैं, श्री कृष्ण ही उद्गम हैं समस्त अवतारों के। और इन श्लोकों में से ये श्लोक, आज का जो श्लोक है एते चांश कलापुंसः, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। तो तरह तरह के वाक्य पाए जाते हैं ग्रंथों में, तरह तरह के तर्क पाए जाते हैं। तो इन सब को देखने के लिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये परिभाषा सूत्र एक प्रकार का ऐनक है, चश्मा है, जिसके द्वारा हम इस सारे ग्रंथ को देख सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में परिभाषा सूत्र कौन सा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो श्रीमद् भागवत के भी सार के श्लोक हैं, चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सिखाए थे, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सिखाए और आगे चल के परंपरा में वो ज्ञान चलता गया है। भगवद गीता के भी चतुश्लोकी है 10वें अध्याय में। तो ऐसे शास्त्रों के सार भी पाए जाते हैं, परंतु ये परिभाषा सूत्र वो है जिसके द्वारा हम उस ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एते चांश कलापुंसः श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है, ये परिभाषा सूत्र है श्रीमद् भागवतम का। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहे कि नहीं नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये परिभाषा सूत्र है, कोई दूसरा श्लोक भी परिभाषा सूत्र हो सकता है जिसमें यह बताया गया है कि भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण से, पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण और नारायण एक ही व्यक्ति हैं, परंतु भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। स्वयं भगवान जो आदि भगवान है, जिनसे अन्य जितने भी भगवान के रूप हैं वो प्रकट होते हैं, वो श्री कृष्ण है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि भागवत में ऐसे श्लोक हैं जिससे ऐसे लगता है कि नारायण उद्गम है श्री कृष्ण के, नारायण से श्री कृष्ण आते हैं, तो ऐसे भी लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ये परिभाषा सूत्र है। और श्रील श्रीधर स्वामी जो कि श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। और साथ साथ में श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो इस बात की पुष्टि करती है कि जो इस श्लोक में कहा गया है वही सही है। तो वैसे श्रीधर स्वामी के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति श्रीधर स्वामी को नहीं मानता है तो फिर वो व्यक्ति कभी श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। श्रीधर स्वामी के द्वारा ही हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार जब एक ब्राह्मण ने, वल्लभ भट्ट ने, श्रीधर स्वामी की टीका को लांग के जाके अपनी ही टीका लिखने का प्रयास किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कड़ी निंदा की उस समय, कहा कि नहीं, आप श्रीधर स्वामी को लांग के नहीं जा सकते, श्रीधर स्वामी के सिद्धांतों के अनुसार ही आपके सिद्धांत होने चाहिए। जो भी आप व्याख्या करते हैं उनका तालमेल होना चाहिए श्रीधर स्वामी की व्याख्या से। तो श्रीधर स्वामी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये 28वां श्लोक तीसरे अध्याय का श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध में ये परिभाषा सूत्र है। तो परिभाषा सूत्र क्यों है ये? क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जो अन्य हैं रूप, जिनका उल्लेख सुत गोस्वामी कर चुके हैं अभी अभी, वो भी भगवान है। कृष्ण भी भगवान है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है, क्योंकि उनसे ये समस्त अन्य अवतार उत्पन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अन्य अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए उनको अवतारी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे कहा है कि श्री कृष्ण अवतारी हैं, केवल अवतार नहीं, फिर भी अवतारों के बीच में भी उनकी गणना की जाती है। ऐसा क्यों? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका कारण यह है कि कृपावश श्री कृष्ण यहां पर प्रकट होते हैं। अवतरति इति अवतारः, जिनका जो अवतीर्ण होते हैं अर्थात जो उतर के आते हैं स्वधाम से, वो अवतार हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण अन्य अवतारों की तरह भी आध्यात्मिक जगत से उतर के आते हैं इस भौतिक सृष्टि में, विशेष करके इस पृथ्वी लोक पर, तो उनको अवतार कहते हैं। इसलिए यद्यपि श्री कृष्ण अवतारों के स्रोत हैं और उनको अवतारी कहते हैं, फिर भी उनको भी अवतार कहना ये गलत नहीं है। आखिर भगवत गीता में वो तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं प्रकट होता हूं या संभवामि युगे युगे, कि हर युग में मैं प्रकट होता हूं, मैं अवतार लेता हूं। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण भी अवतार हैं। गलत नहीं है कहना कि श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, परंतु जैसे हम पहले कह रहे थे, सूत गोस्वामी के मन में यह चिंता थी कि कहीं लोग ऐसा नहीं सोच बैठे कि दोनों का स्तर एक समान है। एक दृष्टि से है, क्योंकि दोनों भगवान हैं, एक ओर श्री कृष्ण और दूसरी ओर जितने भी और भगवान के अवतार हैं वो दोनों भगवान हैं। उस दृष्टि से उनकी श्रेणी एक है, फिर भी भगवान के वर्ग में भी अनेक श्रेणियां आती हैं, अनेक स्तर होते हैं। जैसे अभक्त हैं और भक्त हैं, परंतु भक्त एक बड़ा वर्ग है। भक्तों में भी बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, जो अभी अभी भक्ति शुरू कर चुके हैं, जो अनेक वर्षों से कर चुके हैं, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, जो प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित हैं। तो यद्यपि भक्त ये शब्द एक वर्ग है, कैटेगरी है, फिर भी इसके अंदर भी कई स्तर हो सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ये एक वर्ग है। जो भगवान नहीं है वो उस श्रेणी में नहीं आ सकते, उस वर्ग में नहीं आ सकते, जो है वही है। तो एक वर्ग है ये, और इसमें भी भेद हम कर सकते हैं। यद्यपि एकता है, अभिन्नता है, भिन्नता भी है, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से, उनके दृष्टि के माध्यम से हमें श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए। प्रमुखतः स्वयं भगवान है, उनके साथ में बलराम है, और अन्य हम उनके अंश मानते हैं या अंशों के अंश मानते हैं, जिनको कला कहते हैं। तो अंश वो है जो उनके पूर्णांश है, शक्ति वही है, शक्ति में कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य आदि में कोई कमी नहीं है। जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, ये सब अंश अवतार माने जाते हैं। फिर अंशों के भी अंश हैं, या अंशों के अंश आदि, जिनको कलाह कहते हैं। तो कलाह में हम उदाहरण दे सकते हैं अनेकों का, जैसे शक्त्यावेश अवतार है नारद जी, जिनके अंदर भक्ति की शक्ति का आवेश भगवान ने कराया। तो ऐसे अनेक कला हैं भगवान कृष्ण के, साथ साथ में शक्त्यावेश अवतार हैं, युग अवतार हैं, गुण अवतार हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि छह प्रकार के अवतार होते हैं। तो ये छहों प्रकार के अवतार जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। इन सब के मूल रूप से उद्गम श्री कृष्ण हैं। तो यहां इस श्लोक का विश्लेषण गहराई से हमारे वैष्णव आचार्यों ने किया है। ये इस श्लोक की शुरुआत होती है एते शब्द से। एते मतलब ये सारे, क्योंकि अभी अभी 22 अवतारों का वर्णन हो चुका है। तो जब ये सारे कहते हैं तो किन, ये संबोधन किनका हो रहा है? इन 22 अवतारों का, एते। तो इस श्लोक की शुरुआत हो रही है एते से, अर्थात इन 22 अवतारों का, साथ साथ में च, च मतलब और मतलब और जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया है वो भी, क्योंकि 26वें श्लोक में सुत गोस्वामी कह चुके हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, केवल 22 नहीं। तो एते का मतलब है ये सारे 22, और च मतलब और जितने भी अन्य हैं जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया है इन 22 अवतारों से, विभिन्न जो भी हैं। तो ये सारे अवतार, 6 श्रेणी के जो अवतार हैं, वो सब अंश हैं या तो कला हैं। एते चांश च अंश कला है। किनके अवतार हैं वो, किनके अंश हैं या किनके कला हैं? पुंसः। तो आचार्यों ने बताया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी, और जीव गोस्वामी पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, सारे आचार्यों ने बताया है कि पुंसः मतलब क्षीरोदक्षायी विष्णु, पुरुष अवतार, उनसे उत्पन्न होते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर। तो क्षीरोदक्षायी विष्णु भगवान के वो रूप हैं वो पुरुष हैं जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से समस्त अवतार इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी जब प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि उनके माध्यम से या उनके द्वारा प्रकट होते हैं। इन अवतारों का विशेष करके जो अंश अवतार हैं भगवान के धाम में अपने अपने स्थान हैं, फिर भी जब वो प्रकट होते हैं तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो एते चांश कलह पुंसह, तो इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जितने भी सारे अवतार हैं वो सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में स्थित होते हैं, वो क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं। तो सुत गोस्वामी बात यहां समाप्त नहीं करते हैं, फिर आगे चल के तुरंत कहते हैं कृष्णस्तु, कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हैं और तू शब्द का प्रयोग करते हैं, और तू का अर्थ यहां प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेकिन। ये लेकिन शब्द महत्वपूर्ण है, केवल कोई साधारण शब्द नहीं है ये लेकिन। इसे एक बार इस विषय पर हम बता रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे कि लेकिन शब्द कितना भारी होता है। जैसे हमने किसी से उधार लिया है कोई पैसे, मैंने नहीं लिया ऐसे बोल रहे हैं, तो जब वो हमें पूछने आता है तो हम उत्तर देते हैं हम अवश्य आपके पैसे पूरे करेंगे, लेकिन वो लेकिन सुनता है तो उसके मन में उसका हृदय बैठ जाता, अरे ये लेकिन मैं अभी नहीं मिलेगा पैसा, हम देंगे लेकिन। तो ये लेकिन शब्द का प्रयोग जब आता है तो तुरंत हमें सावधान होना चाहिए, परंतु लेकिन किंतु बट ये सारे शब्द। तो अभिसूत गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्तु, अभी ये सारे श्लोक ये सारे अवतार हैं परंतु उनमें श्री कृष्ण है। तो ये तू शब्द के द्वारा अभी वर्गीकरण कर रहे हैं सुत गोस्वामी, भेद कर रहे हैं, दो वर्ग कर रहे हैं। पहले एक ही वर्ग था सारे अवतार, क्योंकि श्री कृष्ण भी उनमें सम्मिलित थे, लेकिन अभी भेद कर रहे हैं कि कृष्ण एक तरफ और अन्य अवतार दूसरे तरफ। जैसे कि यदि हम कहें कि ये सारे लोग धनी हैं लेकिन ये अरबपति है, इसका मतलब ये नहीं कि अरबपति धनी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा धनी है, इसलिए उसे अलग से इस जोर देके उसके बारे में बताया गया है। ये सारे निवासी भारत के हैं परंतु ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भी भारत के ही निवासी हैं परंतु विशेष हैं। वो अरबपति भी धनी है लेकिन धनियों में से विशेष है। तो जब तू शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इस कारण से किया जाता है कि बताने के लिए कि जिस विषय के ऊपर के संबंध में ये तू कहा जा रहा है लेकिन किया जा रहा है वो विशेष है अन्यों की तुलना में। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी एक हवाई अड्डे पे थे और अनेक भक्त वहां पे आए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे थे, तो हवाई अड्डे में उनको मिलने सारे भक्त आए थे, भक्तों की बहुत भीड़ हो गई वहां पे, और हवाई अड्डे के अधिकारी व्यक्ति थोड़े विचलित हो रहे थे। तो उन्होंने भक्तों से कहा कि कुछ ठीक ठाक आप करिए। तो भक्तों में से एक भक्त उठे और कहने लगे कि यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, तो यहाँ हवाई अड्डे में काफी सब लोग विचलित हो रहे हैं, तो हम सब इस तरफ आते हैं, तो सारे भक्त सारे वैष्णव इस तरफ आइए और प्रभुपाद इस तरफ बैठेंगे। तो प्रभुपाद ने पूछे तो क्या मैं वैष्णव नहीं हूं, आप कह रहे हो सारे वैष्णव इस तरफ लेकिन प्रभुपाद उस तरफ, नहीं, वो भक्त ऐसा नहीं कहना चाहते थे, वो भक्त कहना चाहते थे कि भक्तों में सबसे विशेष श्रील प्रभुपाद है, इसलिए भेद किया उन्होंने। श्रील प्रभुपाद अवश्य वैष्णव है, वो तो परम वैष्णव है, और क्योंकि वो परम वैष्णव है इसलिए उनकी श्रेणी अलग की गई है। वैष्णव है सभी लोग, लेकिन वैष्णवों में से श्रील प्रभुपाद जी का स्थान विशेष है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अवतार हैं, श्री कृष्ण भी भगवान हैं अन्यों की तरह, परंतु उनका स्थान विशेष है। यदि अन्य भगवान, अन्य अवतार भी भगवान हैं, तो श्री कृष्ण की विशेषता किस में है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका तात्पर्य भी गहरा है। इससे हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण से ही अन्य भगवान के रूप प्रकट होते हैं। तो ये हम कहते हैं स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य जितने भी अवतार हैं वो भगवान हैं, परंतु उत्पन्न होते हैं श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण के कोई आदि नहीं है, श्री कृष्ण किन्हीं से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो किसी के विस्तार नहीं है, बल्कि अन्य जितने भी भगवान के श्रेणी में अवतार हैं वो सब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। तो ये श्री कृष्ण का स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसलिए ब्रह्मा जी जीव गोस्वामी पाद ब्रह्म संहिता के श्लोक को भी बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर अनेक है परंतु परम ईश्वर श्री कृष्ण है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि है, उनके कोई आदि नहीं है, परंतु वो सभी के आदि हैं, आदि ही अनादिर आदि ही। उनका नाम है गोविंद और वो समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। तो इस तरह से जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में जब समस्त कारणों के कारण हम कहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि वो समस्त अवतारों के भी कारण है, विष्णु के कारण है, नारायण के कारण है। चार वैष्णव संप्रदायों में से ऐसे कई संप्रदाय हैं जिनमें श्री कृष्ण को परम मानते हैं नारायण की तुलना में, और ऐसे दो हैं जिनमें नारायण को परम मानते हैं, मध्वाचार्य के संप्रदाय में और रामानुजाचार्य के संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि भगवान नारायण परम है, आदि हैं, और समस्त अवतार भगवान नारायण से उत्पन्न होते हैं, यहां तक कि श्री कृष्ण भी उन्हीं के अवतार हैं। वैसे एक दृष्टि से जैसे हम पहले कह भी चुके थे, ये गलत नहीं है, क्योंकि वो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि विष्णु या नारायण स्वरूप है उनके माध्यम से प्रकट होते हैं। परंतु क्षीरोदक्षाय विष्णु कहां से आए, उनके पीछे यदि हम और आगे चलते रहे तो भागवत के अनुसार हम श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभाचार्य की संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय में ये तीन संप्रदाय मानते हैं कि श्री कृष्ण से ही नारायण उत्पन्न होते हैं, श्री कृष्ण आदि भगवान है। तो भारतवर्ष में विशेष करके ये एक भ्रांति का विषय है। जहां भी आप कृष्ण के बारे में प्रचार करने जाएं, अवश्य कोई न कोई व्यक्ति आपसे ये प्रश्न करेगा कि नारा हमने तो सुना था कि नारायण से भगवान कृष्ण आए हैं, आप कहते हैं कि श्री कृष्ण से नारायण उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि भारत में ये धारणा बहुत प्रचलित है, परंतु जीव गोस्वामी ने स्पष्टीकरण किया है कि यद्यपि श्री कृष्ण और नारायण एक हैं, फिर भी तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो नारायण श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत कल और आगे जाके हम चर्चा करेंगे, परंतु यह तात्पर्य के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद आज कह चुके हैं कि श्री कृष्ण वो मूल स्रोत हैं जिनसे उनके विभिन्न विस्तार या अवतार प्रकट होते हैं। तो क्या वो सारे अवतार श्री कृष्ण की संपूर्ण शक्ति को प्रकट करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना ही वो प्रकट करते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार भगवान विभिन्न रूपों को स्वीकार करते हैं, और यहां इस तात्पर्य में वो कई उदाहरण दे चुके हैं, जैसे कि परशुराम ने दुष्ट क्षत्रियों को 21 बार खत्म कर दिया, उनका संहार किया। नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप जैसे भयंकर राक्षस या असुर का वध कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए जितनी ताकत चाहिए थी उतनी ही ताकत भगवान की ताकत की सीमा है। नहीं, भगवान की शक्ति या भगवान की ताकत तो असीमित है। भगवान ने जब नरसिंह देव का रूप धारण किया तो उतनी ही शक्ति का प्राकट्य किया जितना कि हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए आवश्यक था। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह देव भगवान की और शक्ति नहीं है। तो भगवान के अलग अलग अवतारों में वो इसी तरह से अपने शक्तियों का, अपने ऐश्वर्यों का प्राकट्य इस प्रकार से करते हैं। कई बार कोई विष्णु तत्व के श्रेणी में न होकर भी भगवान कहलाते हैं, जैसे विशेष करके शक्त्यावेश अवतार होते हैं। और वो इसलिए है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कोई विशेष शक्ति प्रदान की हुई होती है, इसलिए उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। और उनसे भी कम शक्ति जिनकी है उनको विभूति कहते हैं, जिनका उल्लेख भगवद गीता में भी पाया जाता है। तो समस्त शक्ति ये सब श्री कृष्ण की शक्ति है, और ये इन विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है, उनके द्वारा उनके माध्यम से प्रकट होती है। इसलिए श्री कृष्ण को परम भगवान, स्वयं भगवान समझना ये आवश्यक है, और यही इस श्लोक का और इस तात्पर्य का मूल अर्थ है। तो अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, और कल सुबह फिर जो बाकी तात्पर्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
हरे कृष्ण। तो जब भी हम देखते हैं कि ये 22 विष्णु तत्व में उनको विष्णु तत्व कहा जाता है और कृष्ण तत्व मानते हैं।
नहीं, ये सारे 22 के 22 विष्णु तत्व नहीं है। इनमें से थोड़े शक्त्यावेश अवतार भी हैं जो जीव तत्व हैं, जिनको कि विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। ऐसे परशुराम है, बुद्ध है, ये शक्त्यावेश अवतार है, यद्यपि इनका उल्लेख सुत गोस्वामी ने किया है। इसलिए हम अभी बता रहे थे कि कई अवतारों को भगवान कह के कहा जाता है, लेकिन वो विष्णु तत्व के स्तर में नहीं होते हैं, वो जीव होते हैं, परंतु विशेष जीव होते हैं। भगवान उनको विशेष शक्ति प्रदान करते हैं किसी कार्य को संपन्न करने के लिए। ठीक है,
अभी ये जीव तत्व छोड़ के बाकी तत्वों को विष्णु तत्व ही बोलते हैं हम लोग, और कृष्ण तत्व नहीं बोलते हैं।
हाँ, क्योंकि ये विष्णु के स्तर में है, कृष्ण इनके मूल हैं, परंतु जो कृष्ण के श्रेणी में नहीं है वो भी भगवान ही है। इसलिए उनको विष्णु तत्व कहते हैं। जैसे हम भी अपने आप को वैष्णव कहते हैं, कार्ष्णी भी सही शब्द कहा जाए, जैसे विष्णु के भक्त हैं वैष्णव, तो कृष्ण के भक्त होने चाहिए कार्ष्णी। तो हम अपने आप को, हम तो कार्ष्णी हैं लेकिन अपने आप को हम वैष्णव कहलाते हैं, क्योंकि हम केवल कृष्ण को नहीं मानते हैं, विष्णु के समस्त अवतारों को भी मानते हैं। हम मानते हैं कि नारायण, विष्णु, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये सब भगवान हैं, मानते हैं हम। हर दिन हम लोग कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केवल कार्ष्णियों के की हम को हम प्रणाम नहीं करते, वैष्णवों को प्रणाम करते। ये एक सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी, जिसमें विशेष कौन है फिर उसका स्पष्टीकरण के लिए हमें भागवत में जाना है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या होता है मूल पाप को हम लोग, जैसे कि महाविष्णु है, गर्भोदकशाय विष्णु है, फिर कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु से ये सब अवतार रखते हैं। तो यूजुअली हम ऐसा समझते हैं एक ओर है, ओर से स्टील निकालते हैं, स्टील से फिर कोई उसको खिड़की बनाते हैं, तो मूल हम लोग ओर को ज्यादा देते हैं, स्टील इज पार्ट ऑफ द ओर। वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हम लोग जब बोलते ना ऐसा महाविष्णु से लेके आके क्षीरोदक विष्णु से, उसमें अवतार होने से कृष्ण का नाम आता है, तो ऐसा लगता है कि मूल महाविष्णु।
हाँ, इसलिए तो शास्त्रों को हमें ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और आचार्यों की टीका हमें समझनी है। जैसे एक और उदाहरण दे सकते हैं, वराहदेव का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी से। कैसे, कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के नसिकाओं से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी सांस ले रहे थे बाहर, तो अचानक देखा क्या है ना, कुछ आए हैं बाहर, वो क्या है, देखते रह गए। वो बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते विशाल हो गए, विराट उनका रूप हो गया। तो इसलिए वराहदेव ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। परंतु क्या फिर हम मानेंगे कि ब्रह्मा जी वराहदेव से श्रेष्ठ हैं? नहीं, केवल उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट होने के लिए एक माध्यम बनाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा जी भगवान से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी तो अधिकतर एक जीव रहते हैं, गुण अवतार हैं भगवान के, उनको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। तो ठीक उसी प्रकार से क्षीरोदकशाय विष्णु ये कला है, अंश भी नहीं है, कला है। लेकिन और जितने भी अंश अवतार भी हैं वो भी इस कला के माध्यम से प्रकट होते हैं। साथ साथ में जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं वो भी प्रकट होते हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से। एक द्वार समझिए ब्रह्मांड में प्रवेश होने के लिए, एक सिस्टम बनाया है भगवान ने, इसलिए भगवान उसका पालन करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो पूछिए। चैतन्य महाप्रभु क्या अवतार हैं या अवतारी, आपको क्या लगता है? कितने भक्त सोचते हैं कि वो अवतार हैं? हाँ, वैसे तो सभी अवतार हैं, उस दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से, जैसे कृष्ण अवतार हैं वो भी अवतार हैं, लेकिन अन्यों की तरह चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं ऐसा कितने भक्त मानते हैं? कोई नहीं। और अवतारी? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं, वो भी श्री कृष्ण ही साक्षात है। ठीक है, और प्रश्न कहा है?
तो जीव का उद्देश्य होता है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाए, तो इसीलिए ये सब बहुत ये होता है कि सत्यनाश होता है, तीन विष्णु, ये सब याद करना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र बोल के
हाँ बोल के क्या
धाम में जा सकते हैं हरे कृष्ण नाम में?
कौन से धाम में जाएंगे? किस धाम में जाएंगे?
भगवान के पास,
कृष्ण के पास जाएंगे, विष्णु के पास जाएंगे, नरसिंह देव के पास जाएंगे, किन के पास जाएंगे?
कहने का मतलब है कि जो
हाँ, तो ये
अभी आप स्टडी करके हमको बताया, फिर भी आपको स्टडी करने की जरूरत है। जो एक श्लोक है ना, जो हम वैष्णव के पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं, जने में कथा स्मरण करते
हैं। जैसे अभी और उदाहरण देते हैं, यदि हम सबको बंबई जाना है तो बंबई जाएंगे, लेकिन इतना जानना काफी है कि हमको बंबई जाना है कि और भी कुछ जानकारी चाहिए? क्या जानकारी चाहिए? बंबई में जाके कहाँ जाएंगे? रेलगाड़ी तो हमें स्टेशन तक पहुंचाएगी, फिर उसके बाद क्या करना है? पहली बात तो ये है कि बंबई में कितने सारे स्टेशन है। जो रेलगाड़ी जाएगी, पहले आपको कल्याण उतरना है कि थाने उतरना है कि दादर उतरना है कि वीटी उतरना है, कहाँ, ये पहले मालूम होना चाहिए। फिर वहाँ उतर के फिर कहाँ जाएंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम में जाना है तो भगवान के धाम में कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है? हमें वैकुंठ लोक में जाना है, भगवान नारायण के साथ में हमें रहना है, ऐश्वर्य भाव में उनकी सेवा करनी है, या हमें अयोध्या में जाना है, श्री राम के साथ रहना है, या हमें द्वारका में जाके वासुदेव कृष्ण के पास रहना है, या हमें गोलोक वृंदावन में जाके स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना है, हमें कहाँ रहना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना है। जब ज्ञान ज्यादा गहरा हो जाता है तो ज्यादा विस्तार में हमें पता चलता है। फिर जिस भाव को हम स्वीकार करना चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, उसके अनुरूप हमें कोई गति प्राप्त होगी। इसलिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। केवल इतना जानना कि भगवान का धाम है वो अच्छा है, आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। भगवान के धाम में भी वर्गीकरण है, श्रेणियां हैं। जैसे भगवान है, फिर भगवान की श्रेणियां हैं, तो भगवान की जितने भी श्रेणियां हैं उनसे संबंधित उनके उनके धाम भी हैं। ब्रह्म संहिता में क्या बताते हैं ब्रह्मा जी? गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि हरे के अपने अपने धाम हैं, तो किनके धाम में आप जाना चाहते हैं? वैकुंठ जगत के भीतर भी बहुत सारे श्रेणियां हैं। तो ये स्पष्ट ज्ञान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको मिल रहा है, इसलिए ये जानना आवश्यक है। नहीं तो हम नहीं जानेंगे कि कहां जाना है, नहीं तो अत्रिमुनि जैसी हो जाएगी। उस दिन चर्चा कर रहे थे, अत्रिमुनि को स्पष्ट पता नहीं था कि भगवान कौन है, उनको इतना पता था कि कोई भगवान तो है। तो उन्होंने कहा जो भगवान है, जो भी है आप आइए कृपया मेरे पास। तो ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी आए, भगवान विष्णु आए उनके सामने। आपने जगत ईश्वर को बुलाया था, हम सब तीनों ईश्वर हैं, तो हम आए हैं आपके सामने, क्योंकि अत्रि मुनि को स्पष्ट ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार से हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए स्पष्ट कि हमें स्पष्ट ज्ञान न हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों को लिखा है ताकि हम अच्छी तरह से विस्तार में जान लें। तो ये विज्ञान है, और विज्ञान का अर्थ है कि हर एक शब्द की परिभाषा होती है, हर एक शब्द को हमें सही तरह से गहराई में समझना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से समझेंगे तो सही गति या सही निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हुई बात? हाँ, और माइक दीजिए वहां। हाँ,
हरे कृष्णा महाराज।
हरे कृष्णा
महाराज। जबकि चारों अधिकृत संप्रदायों में श्रीमद् भागवतम को एक मूल आधार ग्रंथ माना जाता है और चारों संप्रदाय के जो आचार्य है वो भी भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है, फिर भी जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि भगवान कृष्ण से नारायण आते हैं, उनमें मतभेद क्यों है?
भाव के अनुसार, क्योंकि भाव में अंतर है। जैसे हम पहले कहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने श्लोकों की रचना भी ऐसे की है कि जैसे जिसका भाव है वैसे वो अर्थ देख सकते हैं। तो जो भक्त, भले वो शुद्ध भक्त हो, जो ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान का नारायण रूप है। क्योंकि जब नारायण की सेवा करते हैं तो ये सदैव ध्यान में रखना पड़ता है कि ये भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। परंतु जो वृंदावन के भाव में, और वृंदावन है, वृंदावन में भी उनके भक्त हैं, तो वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो उनको केवल एक ग्वाल बाल मानते हैं, उनका मित्र, उनका प्रेमी, उनका बेटा इत्यादि मानते हैं। तो यदि हम उस भाव में माधुरी को प्राधान्य देकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो फिर हम वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चलेंगे। तो ये भिन्न मत क्यों है? क्योंकि भाव में भिन्नता है। और भाव में भिन्नता क्यों है? क्योंकि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व का मतलब है कि सबके विचार, सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं। इसके कारण तो गलत सही की बात नहीं है, सब अपने जगह में सही है, क्योंकि वही एक भगवान की उपासना कर रहे हैं। जैसे श्री, ये उदाहरण तो आप कई बार सुन चुके होंगे कि श्री कृष्ण घर के भगवान हैं और नारायण जो है वो दफ्तर के, ऑफिस के भगवान हैं, हैं दोनों एक ही व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति घर में रहता है तो वो अपने आराम से रहता है, घर के कपड़े पहनता है, लेकिन जब दफ्तर जाता है तो दफ्तर के लिए अलग अलग वस्त्र होते हैं और वहाँ बर्ताव भी अलग होता है। वहाँ सबको नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग करना है, और जितने आराम से वो व्यवहार करते हैं घर में वैसे नहीं कर सकते। घर में जैसा चाहे वैसे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन दफ्तर में जाके सो नहीं सकते। तो दफ्तर में व्यवहार अलग होता है। तो है एक ही व्यक्ति लेकिन वो भाव को अलग प्रकट कर रहे हैं। तो जो उनके साथ संबंध रखते हैं दफ्तर में, उनका भाव उनके प्रति कुछ ऐश्वर्य का होगा, साहब साहब कहकर उनको बुलाएंगे। लेकिन घर में उनको कौन साहब पुकारता है? कोई नहीं। घर में वो साहब नहीं है, घर में वो बस घर के हैं। तो जो उनको घर में उस भाव में देखना चाहते हैं वो उस भाव से उनकी सेवा करेंगे, और दफ्तर में जो है वो भी उनके उस भाव से सेवा करेंगे। हनुमान जी श्री राम जी की सेवा, रामचंद्र की सेवा करते हैं, उनकी इच्छा यही है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को गोपियों के बारे में पता नहीं है। हनुमान जी बड़े पंडित हैं, उनको पता है कि वृंदावन का भाव क्या है, उनको पता है कि गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो दंडवत प्रणाम करेंगे गोपियों को, उनके चरण धूलि लेंगे सर पे, लेकिन उनको, उनकी श्रद्धा, उनकी जो सेवा है श्री रामचंद्र के प्रति, वो उनका भाव है। तो हर एक जीव का भाव अलग अलग होता है, उनकी भक्ति भगवान के प्रति अलग अलग तरह से व्यक्त हो सकती है। तो इसलिए जो धारणाएं हैं वो भी अलग अलग हो जाती है। ठीक है। क्या ये प्रश्न है, क्या श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक भी परिभाषा सूत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें भी विषय का स्पष्टीकरण होता है, तथा चतुश्लोकी भागवत के बारे में क्या वर्णन है। वैसे श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक अवश्य महत्वपूर्ण है और ये मंगलाचरण में आता है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी विषय का स्पष्टीकरण होता है, परंतु एक सामान्य रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव कौन है? द्वारका के भी कृष्ण हो सकते हैं, वृंदावन के भी हो सकते हैं, नारायण को भी वासुदेव कहते हैं, एक सामान्य रूप से स्पष्टीकरण किया गया है। लेकिन विशेष रूप से स्पष्टीकरण ये पाया जाता है इस परिभाषा सूत्र में कि वासुदेव के भी कई स्तर होते हैं। ये वासुदेव एक वर्ग है, वासुदेव जो सर्वव्यापी हैं, तो उनके भी वर्ग हो, उनके भी श्रेणियां होती है। तो जो वृंदावन के श्री कृष्ण हैं वो परम है, ठीक है। माइक है, प्रश्न है कोई पूछे?
कृष्ण से नारायण अवतार आते हैं बोलते हैं, और नारायण तो कभी
श्रद्धा है ना,
हाँ
बोलते हैं, मतलब है आते हैं,
तो मगर नारायण शाश्वत रहते हैं ना, तो उसमें अवतार कैसा है, मतलब आदि कभी भी उनका इटरनल है ना,
हाँ
तो ये प्रकट होते हैं बोला तो
हाँ ठीक, ऐसे ही है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अभी भक्त लोग सुबह मंगल आरती में आते हैं अपने अपने घरों से, आज के दिन के लिए वो अब प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल वो नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे और कल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, वो आज के लिए आज प्रकट हो रहे हैं। तो जितने भी अवतार हैं जो प्रकट होते हैं वो इसी दरवाजे से भक्त आते हैं सब, उसी तरह से भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भी क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं, लेकिन है वो अपने स्थान में सब शाश्वत रूप से विद्यमान है, उनका कभी जन्म नहीं होता। जब आत्मा का जन्म नहीं होता है तो फिर भगवान का जन्म कैसे होगा? तो न कभी नारायण का जन्म होता है, न कभी कृष्ण का जन्म होता है, भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, ठीक है।
वैकुंठ में नारायण ऐसे रहते हैं, उधर अवतार नहीं लेते हैं, मगर इधर भूमन में अवतार लेते हैं, मगर वैकुंठ में सो कृष्ण का से नारायण प्रकट हो रहा है, मतलब उसमें थोड़ा
प्रकट हो रहा है। तो ये हमारी भाषा की सीमा है, देखिए जब प्रकट हो रहे हैं या हुए हैं, हम ऐसे शब्द कहते हैं, तो इसमें काल या समय का विचार करना पड़ता है। प्रकट हुए तो कब हुए, ये तुरंत प्रश्न आता है, परंतु भगवान के लिए काल की सीमा नहीं है, वो काल की सीमा में बांधे नहीं जाते हैं, इसलिए भगवान के लिए ये शब्द नहीं आता कि कब भगवान प्रकट हुए, नारायण कृष्ण से कब हुए, कब की बात नहीं कर सकते। सदैव शाश्वत रूप से वो प्रकट हुए, लेकिन कब हुए ये प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि काल उनकी काल का आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। शाश्वत ही वो अंश है, जैसे आत्मा की बात भी वैसे, भगवान के अवतारों की बात तो दूर है, जीव भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश, तो कब उनके अंश बने, शाश्वत रूप से अंश है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के विभिन्न अवतार, वो भी शाश्वत रूप से भगवान के अवतार है, ठीक है। भगवान केवल भारत में क्यों अवतार लेते हैं? नहीं, स्वर्गलोक में भी लेते हैं, अनेक देशों में लेते हैं, सब जगह लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीधर स्वामी का तात्पर्य असली तात्पर्य है, तो कभी कभी अन्य आचार्य कभी ऐसे तात्पर्य लिखते हैं जो ऐसे प्रतीत होता है कि उनसे तात्पर्य से अलग है। नहीं, मूल में, भाव में, सिद्धांत में अलग नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं उनकी टीकाओं में और श्रीधर स्वामी की टीकाओं में कोई अंतर नहीं है। मूल रूप से भाव सही है, सिद्धांत के अनुसार है, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है इनमें।
हाँ, युगों के जब बदलते हैं तो क्या पृथ्वी का आकार कम बड़ा या होता है?
पृथ्वी का
ऐसा हम सुनते हैं सती में लोग बड़े होते हैं, कलयुग में छोटे होते हैं, तो का आकार बढ़ता है, वैसे ही पृथ्वी का आकार कम ज्यादा होता है।
प्रश्न ये है कि जैसे मनुष्यों का आकार बढ़ता है और कम होता है युगों के आने जाने से, सत्ययुग में लोग बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे और कलयुग में बहुत अभी हम छोटे हैं, तो क्या पृथ्वी का आकार भी ऐसे होता है? हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को हम पृथ्वी मानते हैं केवल उतना ही भूमंडल है, ऐसा नहीं है। ऐसे भूमंडल काफी है जो हम अभी समझ नहीं सकते हमारे स्थूल इंद्रियों से कलयुग में, तो भूमंडल भी बहुत बड़ा विषय है। हम अभी सारे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म भूमंडल है उसको भी हम नहीं जान पाए हैं। सूक्ष्म भूमंडल की बात दूर है, स्थूल भूमंडल को भी हम नहीं जान पाए हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा, ये शाश्वत हैं या थोड़े समय के लिए रहते हैं? क्योंकि जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें चले जाते हैं। हाँ, सही है, क्षीरोदकशायी विष्णु फिर गर्भोदकशायी विष्णु में रहते हैं, फिर सारे समस्त ब्रह्मांडों के गर्भोदकशायी विष्णु महाविष्णु में चले जाते हैं, और पुनः जब सृष्टि की रचना होती है तो फिर हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु अपने आप को गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और फिर गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु आते हैं। और कोई प्रश्न? अंतिम प्रश्न। हाँ,
महाराज आपने अभी बताया कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा हमको जानना चाहिए कि भगवत धाम या वैकुंठ, लेकिन अगर कोई भक्त या साधक कि वो ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए असमर्थ है,
तो इतना कोई असमर्थ नहीं होता। असमर्थ होता है जब श्रद्धा नहीं होती है, तब श्रद्धावान व्यक्ति के लिए सारी चीजें व्यक्त हो जाएंगी, जाने अनजाने चीजें सब उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे भक्ति की शक्ति के द्वारा, भगवान की कृपा से। केवल वो श्रद्धालु रहे और आचार्यों के आदेशों का पालन करता रहे, भले उसकी भौतिक बुद्धि इतनी न हो कि वो गहराई से ये सब चीजें समझ सके, परंतु मूल बातें तो हर व्यक्ति समझ सकता है। श्री कृष्ण भगवान है, हमें वृंदावन जाना है, हमें बड़े मधुर ढंग से भगवान की सेवा करनी है, हरि नाम ही सर्वस्व है, ऐसे सीधे सीधे चीजें हैं। श्रद्धा है हमारे अंदर तो हमें सारे जो भागवत के और अन्य ग्रंथों के सारे जो गुह्य तात्पर्य हैं वो सब प्रकट हो जाएंगे हृदय में। तो भौतिक बुद्धि, भौतिक शिक्षण का विचार नहीं है इसमें, ये आध्यात्मिक विषयों को श्रद्धा की दृष्टि से समझा जाना चाहिए। और जहां तक भौतिक बुद्धि की बात है, जहां तक हो सके हमें भौतिक बुद्धि को कष्ट देना चाहिए इस चीज को समझने के लिए। जितना हम समझ पाए समझ पाए, नहीं समझ पाए तो ठीक है, हरि नाम है ही हमारे लिए। और ये सब चीजें समझने का उद्देश्य भी है कि हम हरि नाम में श्रद्धा रखें और हरि नाम का रस लें। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अंतिम अंतिम प्रश्न। हाँ, एक मिनट, नहीं यहाँ वो पूछ रहे हैं उनके जरा।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
सभी अवतार भगवान के हैं, भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी फिलॉसफी वैष्णव फिलॉसफी से अलग है, क्यों ऐसा?
भगवान की इच्छा से ही। इसलिए यदि भगवान भी आके हमें कुछ कहे, हमें नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो शास्त्रों से मिलता जुलता ना हो। भगवान ने एक पद्धति सिस्टम बना लिया है कि मेरे शास्त्र मेरे वाक्य हैं, मेरे वचन हैं, तो जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसे ही करना है। स्वयं भगवान आकर भी शास्त्रों को के विरुद्ध कुछ कहते हैं फिर हम उनको नहीं मानते हैं। बुद्ध देव एक विशेष उद्देश्य से प्रकट हुए थे, वो विषय लंबा है उसमें नहीं जाएंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जानबूझ के एक ऐसे गलत सिद्धांत प्रस्तुत किया। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इसलिए हमें शास्त्र चाहिए। शास्त्र में बुद्ध देव का की भविष्यवाणी की गई है और किस तरह का सिद्धांत वो प्रस्तुत करेंगे और क्यों करेंगे इसके बारे में भी भविष्यवाणी हुई है, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु इन्होंने जो भी कहा शास्त्रों के आधार पर कहा, हर चीज जो भी वो कहते थे उसके पीछे शास्त्रों का प्रमाण देते थे, हालांकि उनको आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं भगवान है, बस वो उन्होंने कह दिया ये सत्य है। फिर भी शास्त्रों की प्रधानता को महत्व को बताने के लिए वो हमेशा शास्त्रों का प्रमाण दिया करते थे, इसलिए शास्त्रों का ये महत्व है। इससे हम समझ सकते हैं कि सही भगवान कौन है, अवतार कौन है और नकली कौन है। और यदि वो ऐसे वैष्णव धर्म के विरुद्ध भी ऐसे कुछ कहते हैं तो इसके पीछे भी भगवान की क्या योजना है, इसका भी ज्ञान शास्त्रों में दिया जाता है। ठीक है, पूछना है? ठीक है।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
तत्वों को सिद्धांतों को
हाँ
डिटेल में हम समझते हैं, माइक्रो में जाके मतलब बहुत मतलब बारीकी से जो हम समझना यहाँ प्रयत्न करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी आए हैं सब भाग्यवान हैं।
अवश्य जिनको प्रभुपाद जी के ग्रंथों का स्पर्श हुआ है, संपर्क हुआ है, जो इस दर्शन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, अहो सौभाग्यशाली है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे विरला ही किसी व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है। दुनिया में कितने लाखों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को ऐसे गुह्य और गहरे सिद्धांतों को सुनने का पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए हमारे सौभाग्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस पद को बड़े गंभीरता से स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप में से जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया अभी तक क्षमा चाहते हैं, 10 बज गए, कितने भक्तों ने प्रसाद नहीं लिया अभी तक? सुबह का नाश्ता सब लोग लिया, ठीक है। हरे कृष्णा।